स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा। सुबह की चर्चा से और एक श्लोक आगे पढ़ के फिर उसके ऊपर चर्चा करते हैं। नैमिषारण्य के ऋषिगण बोल रहे हैं, जीवन शवो भागवतांग्रिरेणुं न जातु मर्त्यो भिलभेत यस्तु श्री विष्णुपद्या मनुजस्तु लस्याः श्वसान शवो यस्तु न वेद गंधम। अभी ऐसे व्यक्ति का वर्णन नैमिषारण्य के ऋषि कर रहे हैं जो जीते हुए भी मरे हुए हैं। जीवन शव, एक जीवित शव, ये विरोधाभास लगता है ना। जीवित शव कैसे हो सकता है? जीता हुआ मरा आदमी ऐसे हो सकता है? जीवित शव, शव मतलब जो मर गया है, तो वो जीवित कैसे हो सकता है? लेकिन यहां जीवन शव, जो व्यक्ति जीवित होते हुए भी भागवत आंग्री रेणुम न जातु मर्त्यः अभिलभेत यस्तु हो, जो भागवत अर्थात जो भगवान के भक्त हैं उनको भागवत कहते हैं। अंग्री मतलब चरण, तो जो भगवान के भक्तों के चरण के जो धूलि को स्वीकार नहीं करते हैं रेणु, भागवत अंग्री रेणु, जो ऐसे स्वीकार नहीं करते हैं तो वो जीवन शव है। कितनी महत्वपूर्ण बात है, जो लोग भगवान के भक्तों के चरणों के धूलि को अपने शरीर पर स्वीकार नहीं करते हैं वो जीते हुए भी मरे हुए आदमी के समान हैं। जीवन शव है ना, काफी कठोर वचन। और फिर आगे, और कौन आदमी है जो जीते हुए भी मरा हुआ है? श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्याः श्वसन शवो यस्तु न वेद गंधम। जिसने श्री विष्णु के पद कमलों में अर्पित किया हुआ जो तुलसी है उसका गंध न जाना हुआ हो, ऐसा व्यक्ति कैसे है? श्वसन शव, फिर से वही, पहले जीवन शव था, अभी श्वसन शव, जो सांस लेते हुए भी मरा हुआ है। तो तो जिस व्यक्ति ने भगवान कृष्ण या विष्णु के चरण कमलों में अर्पित किए हुए तुलसी, मंजरी और दल आदि को सूंघा नहीं है, उसका गंध नहीं लिया है, वो कैसा है? श्वसन शवः, जीते हुए भी मरा हुआ आदमी है। इसको निर्माल्य कहते हैं। जो भगवान को पुष्प, तुलसी आदि अर्पण करते हैं और प्रसाद के रूप में जब हम उसे स्वीकार करते हैं तो निर्माल्य कहते हैं। उससे हमारा हृदय भी निर्मल हो जाता है, निर्मल, मल से मुक्त हो जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है। जैसे चार कुमारों का हुआ, चार कुमार तो पहले से ब्रह्मवादी थे, पहले तो आध्यात्मिक स्तर पे स्थित थे, परंतु भगवान की भक्ति में इतने आगे बढ़े हुए नहीं थे, सेवा भावना उनकी इतनी विकसित नहीं हुई थी। परंतु वैकुंठ के द्वार पे जाने पर जब भगवान विष्णु के चरण कमल के तुलसी का गंध उनके नसिकाओं में से प्रवेश कर गया, तब उनके चित्त में एक परिवर्तन हो गया और फिर वो भक्त बन गए। तो केवल गंध, किसी निर्माल्य का गंध स्वीकार करने मात्र से न केवल अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु भगवान के प्रति भक्ति की भावना भी जागृत हो जाती है। और जो व्यक्ति इतना भी नहीं करता है उसको जीने का अधिकार ही क्या है? तो जीते हुए भी वो मरा हुआ है। अब भगवान इतने कृपालु हैं, उन्होंने भक्ति का मार्ग इतना आसान बना दिया है हमें, ढूंढ ढूंढ के तरह तरह से उन्होंने ऐसे तरीके बताए हैं हम सब के लिए भक्ति करने के लिए। यदि कोई कहे कि भाई देखो, हम तो हिमालय में नहीं जा सकते, संन्यास नहीं ले सकते, बहुत तपस्या नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, नाम ले लो मेरा। अच्छा, संन्यास के बिना भी नाम लिया जा सकता है? हाँ, कहीं भी ले लो नाम, घर में भी ले सकते हैं? हाँ, घर में भी ले लो, चलो, छोटे बड़े सब ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। सुबह ही उठना होगा, उठो तो अच्छा है, लेकिन नहीं उठो तो फिर भी कभी भी कर लो, भगवान का नाम कभी भी ले सकते हो। अच्छा, और हमें तो व्यवसाय करना है, नौकरी करनी है, घर के काम संभालने हैं, पढ़ाई करनी है, कोई बात नहीं, करते रहो, एक बार तो कम से कम मंदिर जाओ। मंदिर जाके क्या करेंगे? मंदिर जाके भगवान का दर्शन करो। जो थोड़े समय के लिए, एक मुहूर्त के लिए जो भगवान के मंदिर में बैठता है, केवल मंदिर में जाके बैठता है, उसके लिए वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। ऐसे भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं। जप करने की बात दूर है, प्रवचन सुनने की बात दूर है, केवल भगवान विष्णु के मंदिर में जाके जो दो मुहूर्तों के लिए बैठता है, बस उसके लिए वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। अभी वो भक्त बनेगा, आज नहीं तो कल बनेगा। कई बार हम देखते हैं मंदिर, हमारे मंदिर में भी आते हैं ना लोग, ऐसे ही आके बैठ जाते हैं मंदिर में, भले इधर उधर दर्शन लेते हैं, बैठते हैं अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ आते हैं। उतना बैठना भी बहुत अच्छा है, कम से कम उतना तो लाभ उनको मिल रहा है, दर्शन ले रहे हैं। भगवान को जो अर्पित अगरबत्ती है उसका गंध सूंघने से, तुलसी दल सूंघने से हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो भगवान ने ऐसे व्यवस्था की है हमारे लिए कि किसी भी इंद्रिय का प्रयोग करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अपने जिह्वा से कीर्तन कर सकते हैं, नाम उच्चारण कर सकते हैं, प्रसाद तुलसी आदि का स्वाद ले सकते हैं, आंखों से भगवान के रूप का दर्शन कर सकते हैं, कानों से कथा नाम आदि श्रवण कर सकते हैं, त्वचा से हम हमारे शरीर से दंडवत प्रणाम कर सकते हैं, भक्तों का आलिंगन कर सकते हैं, तरह तरह की सेवाएं कर सकते हैं, जैसे कि मंदिर का मार्जन करना है, अपने नसिकों से, अपने नाक से हम गंध सूंघ सकते हैं निर्माल्य का, तो भगवान ने इतने सारे रास्ते दिए हैं, ये नहीं तो ये, ये नहीं तो ये, कहीं ना कहीं कुछ तो एक आदमी करे उसका भला हो जाए। फिर भी यदि कोई जिद्दी रहे, बोले कि नहीं ये भी नहीं वो भी नहीं करूंगा, तो फिर क्या किया जा सकता है। परंतु भगवान इतने कृपालु हैं कि उन्होंने इतने सारे रास्ते दिए हैं हम सब के लिए, और जो व्यक्ति इतना कृपण है कि इनका बिल्कुल लाभ नहीं उठाएगा, तो जैसे यहां ऋषि कह रहे हैं, वो तो जीते हुए भी मरे आदमी के समान है। माता देवहूति भी श्रीमद् भागवत में ऐसे ही कहती हैं, नेह यत् कर्म धर्माय न वैराग्य उपकल्पते न तीर्थपद सेवायै जीवन नपि मृतो हि सः। वो कहती हैं कि जो व्यक्ति केवल कर्म करता है और सोचता है कि कर्म ही करना इतना है, धार्मिक क्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं है, या जो व्यक्ति धार्मिक क्रियाओं को करता है परंतु उनसे उसके जीवन में वैराग्य की उत्पत्ति नहीं होती है, या वो व्यक्ति जिसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है परंतु वो भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन नपि मृतो हि सः, जीते हुए भी मरे हुए आदमी के समान है। तो बार बार ये बातें भागवत में पढ़ने में आती हैं कि जो भगवान की भक्ति नहीं करता है उसको जीने का अधिकार नहीं है, बल्कि जीते हुए भी वो मरा हुआ है, वो जीवित आदमियों के आदमियों में से नहीं गिना जाता है। इसलिए यहां भी इसी बात को, जीवन शव श्वसन शव, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ऐसे कौन होते हैं जो मरने पर भी सांस लेते हैं, ये है भूत। तो प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में लिखते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ऐसे बताते हैं कि जो अभक्त होते हैं वो भूत के समान होते हैं, वो भी सांस ले रहे हैं, भूत भी तो जीवित है ना, वो भी तो जी रहे हैं लेकिन सेवा नहीं करते हैं भगवान की। जीते हुए मरे हुए भी वो जी रहे हैं, मृत्यु के बाद भूत आता है, उसको जब स्थूल शरीर नहीं मिलता है मृत्यु के बाद तो वो भूत बन जाता है। तो ऐसे लोग जो भगवान की सेवा नहीं करने के लिए जिद करते हैं वो भूत के समान है, भूत प्रेत के समान। और आजकल तो ऐसे भूत प्रेतों की संख्या सारे विश्व में तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए इसे भूलोक कहा जाता है, नहीं भूतलोक कहना चाहिए। वैसे भूतों का भी एक प्रांत है, एक लोक है जहां भूत प्रेत पिशाच इत्यादि निवास करते हैं। तो कितनी महत्वपूर्ण बात है, देखिए बार बार इतने संतों ने इतने कठोर वचन इस्तेमाल किए हैं, हमें लगता है कि ऐसी बातें क्यों करते हैं, कभी कुत्ते से, कभी ऊंट से, कभी गधे से, कभी सुअर से तुलना करते हैं, कभी कभी मरे हुए आदमी के समान ऐसे कहते हैं, क्यों ये लोग मीठी बातें क्यों नहीं करते? क्योंकि मीठी मीठी बातें कहने से हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, हमको जगाने के लिए कठोर वचन ही बोलने पड़ते हैं। ये ऋषिगण इसको अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए ऐसे कठोर वचन कभी कभी बोलने पड़ते हैं उनको। तो ऐसे प्रभुपाद जी बतला रहे हैं अपने तात्पर्य में कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की संपत्ति होते हैं। जैसे आज सुबह भी चर्चा कर रहे थे कि भगवान अपने भक्त के वश में आ जाते हैं, और भक्त की ये शक्ति रहती है कि वो भगवान को किसी दूसरे व्यक्ति को प्रदान कर दे, किसी दूसरे व्यक्ति के हवाले वो भगवान को कर दे। भगवान की शुद्ध भक्त की ऐसी शक्ति होती है। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाव तव पाछे पाछे। तो हम तो कंगाल हैं, ऐसे भक्त की भावना होनी चाहिए, हमारे पास तो कुछ नहीं है। ये वैष्णव गोसाई, आपके पास सब कुछ है, आपके पास कृष्ण है। कृष्ण से तुमार, कृष्ण दीते पारो तुम्हारा शक्ति आछे। मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो कंगाल हूं, भिखारी हूं, लेकिन आपके पास कृष्ण है, इसलिए आप कृष्ण को दे पाओगे हमें, ये शक्ति आपके अंदर है। इसलिए भक्त, भक्तों की सेवा करना, भक्तों की चरण धूलि प्राप्त करना, इसके ऊपर बहुत जोर दिया गया है। प्रहलाद महाराज भी इस बात पे जोर देते हैं, महाराज रहुगण भी इस बात पे जोर देते हैं, जड़ भरत भी इस बात को कहते महाराज रहुगण से, और बार बार इस तत्व को दोहराया गया है कि कैसे भक्तों की सेवा करना ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। हाँ, रज, भक्तों के चरणों के रज को प्राप्त करना, ये प्रत्यक्ष रूप से भी स्वीकार कर लेना चाहिए, साथ साथ इसका जो तात्पर्य है इसको भी समझ लेना चाहिए। केवल हम रज लेते रहेंगे परंतु आदेश का पालन नहीं करेंगे तो उतना फायदा नहीं होगा। बाल्टी भर भर के भी हम रज लेंगे और उसे स्नान भी करेंगे परंतु माला नहीं करेंगे, अन्यों की भक्तों की सेवा नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, वो भक्ति के अंगों का पालन नहीं करेंगे तो उतना लाभ नहीं होगा। इसलिए भक्तों के चरणों की धूलि स्वीकार करने का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ ये है कि हम उनके उनकी सेवा करें और उनके आदेशों का, उपदेशों का पालन करें, उनको ग्रहण करें हमारे जीवन में। ऐसे करने से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। इस तरह से इन कई श्लोकों से, पिछले दो दिनों से जो हम जिन श्लोकों की चर्चा करते आए हैं, हम समझ जाएंगे कि इसका तात्पर्य ये है कि हमारा सब कुछ केवल भगवान के लिए ही है। हमारी आंखें भगवान के लिए, कान भगवान के लिए, नाक भगवान के लिए, जिह्वा भगवान के लिए, शरीर भगवान के लिए, शक्ति भगवान के लिए, बुद्धि भगवान के लिए, सब कुछ भगवान के लिए। हमारा कुछ अपने आप के लिए है ही नहीं, सब कुछ भगवान की संपत्ति है, और जो भी कुछ हमारे पास है सब का प्रयोग भगवान की सेवा में ही होना चाहिए। जब सनातन गोस्वामी वृंदावन से पुरी आए थे तो रास्ते में चलते चलते, यात्रा काफी लंबी थी, उन दिनों में तो रेलगाड़ी वगैरह तो नहीं थे, पैदल ही जाना पड़ता था, और आपको पता है कि वृंदावन से जगन्नाथपुरी तो काफी लंबी यात्रा है। वो चलते चलते गए थे और कहीं प्रदूषित पानी आदि पी के उनके शरीर में कोई फोड़े वगैरह हो गए जिनसे कि पस निकल रहा था, सारे शरीर उनका ऐसे फोड़ों से भर गया था और बहुत दर्ददायक थे ये फोड़े, और कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता था क्योंकि फोड़ों से पस वगैरह सब निकल रहा था। तो सनातन गोस्वामी ने किसी तरह से पहुंचे तो सही जगन्नाथपुरी, और वहां चैतन्य महाप्रभु को देखा सनातन गोस्वामी ने, दंडवत प्रणाम वगैरह किया, लेकिन सोच रहे थे कि मेरा शरीर कितना अयोग्य है जीवित रहने के लिए, मैं जगन्नाथ मंदिर के पास में भी जाऊं, वहां के जो पुजारी हैं यदि उन्होंने मेरे शरीर से स्पर्श किया तो वो प्रदूषित हो जाएंगे, वो कैसे भगवान की सेवा के लिए जाएंगे आगे, ये शरीर मेरा बिल्कुल व्यर्थ है, तो मुझे शरीर को त्याग देना चाहिए क्योंकि इस शरीर का कोई काम नहीं है, वैसे भी मैं बेकार का आदमी हूं, मैं व्यर्थ हूं, मेरे अंदर कुछ अच्छे गुण नहीं हैं। तो फिर ऐसे मन में विचार कर लिया सनातन गोस्वामी ने कि जब रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ जी की रथ जो है आगे चलेगी, उस समय उस रथ के चक्के के नीचे, पहिए के नीचे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा। जैसे आजकल लोग रेलगाड़ी के सामने जाते हैं ना, तो वैसे उस समय रेलगाड़ी तो थी नहीं, और जगन्नाथ जी की रेल गाड़ी के नीचे जाएं तो जगन्नाथ का दर्शन करते करते प्राण त्याग दें, ऐसे विचार किया सनातन गोस्वामी। अब चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्यामी हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं, सनातन गोस्वामी क्या सोच रहे थे। तो एक दिन अचानक सनातन गोस्वामी से मिले चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में, और उनके बीच में क्या संवाद हुआ ये विषय अचानक चैतन्य महाप्रभु ने निकाला। सनातन गोस्वामी ने ये बात किसी को बताई नहीं थी कि मैं आत्महत्या करने का विचार कर रहा हूं, और वो भी रथ यात्रा के दिन, और वो भी जगन्नाथ के रथ के पहिए के नीचे। केवल अपने मन में विचार था, परंतु महाप्रभु को पता चल गया। तो क्या कहा महाप्रभु ने देख लेते हैं। तो एक बार जब चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी को मिलने आए हरिदास ठाकुर के निवास स्थान में, क्योंकि सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर के साथ में रहते थे जगन्नाथपुरी में। सनातन देह त्यागे कृष्ण ज्योति पाइये, कोटि देह क्षणिक तबे छाड़िते पारिये। सनातन देह त्यागे कृष्ण ज्योति पाइये, अरे सनातन यदि देह त्याग करके कृष्ण मिल जाते तो कोटि देह क्षणिक तबे छाड़िते पारिये, तो मैं तो कोटि कोटि देह एक क्षण में त्याग देता। यदि ये कृष्ण को पाने का तरीका है कि हम शरीर को त्याग दें, तो मैं तैयार हूं एक के बाद एक लाखों लाखों शरीरों को त्यागने के लिए। देह त्यागे कृष्ण ना पाए पाइये भजने, कृष्ण प्राप्ते उपाय कोनो नाही भक्ते बिने। देह त्यागे कृष्ण ना पाए पाइये भजने। देखो सनातन, कृष्ण को पाना है तो इसका तरीका देह त्यागना नहीं है। देह त्यागने से कृष्ण नहीं पाएंगे पाओगे। कृष्ण को कैसे पाओगे? भजन करके। कृष्ण भजने, कृष्ण की सेवा करके, कृष्ण की भक्ति करके कृष्ण पा सकते हो। कृष्ण प्राप्ति उपाय कोनो नाही भक्ति बिने, तो भक्ति के बिना कृष्ण को प्राप्त करने का अन्य कोई भी रास्ता नहीं है। देह त्यागादि जत शब तम धर्म, तम रज धर्म कृष्ण न पाई ये मर्म। ऐसे कार्य जैसे आत्महत्या, ये सब रजगुण और तमोगुण से प्रभावित होते हैं, और भगवान को कभी भी तमोगुण के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखिए महाप्रभु कैसे तत्वों को बोल रहे हैं, केवल भक्ति से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अन्य किसी भी रास्ते से नहीं, देह त्यागने से नहीं, कुछ नहीं। और देह त्यागना ये तामसिक कार्य है, भगवान की प्राप्ति विशुद्ध सत्व के स्तर में होती है, तामसिक अवस्था में नहीं होती है। भक्ति बिना कृष्ण कभू न है प्रेमोदय, प्रेम बिना कृष्ण प्राप्ति अन्य होते न। भक्ति बिना कृष्ण कभू न है प्रेमोदय, कृष्ण की भक्ति नहीं करोगे तो कभी भी हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम का उदय नहीं होगा। और यदि कृष्ण के प्रेम का उदय नहीं होगा हृदय में, तो कृष्ण को प्राप्त कैसे करोगे? कृष्ण को प्राप्त करने का तरीका है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का तरीका है कृष्ण भक्ति करना। और कृष्ण भक्ति करने के लिए हमें जीवित रहना चाहिए। फिर वो श्रीमद् भागवत के श्लोकों को बीच बीच में बोलते हैं, फिर आगे कहते हैं, देह त्यागादि तमो धर्म पातक कारण साधक न पाए ताते कृष्ण रचरण। देह त्याग आदि तमो धर्म, ये तामसिक कार्य है देह त्यागने का। पातक कारण, पातक कारण मतलब पतन का कारण हो जाता है, नरक को प्राप्त करने का कारण हो जाता है। तो जो व्यक्ति ऐसे आत्महत्या करता है उसको नरक की प्राप्ति होती है, कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। साधक ना पाए ताते कृष्ण रचरण, तो कृष्ण की शरण तो अवश्य प्राप्त नहीं करेगा यदि ऐसी भावना से अपने देह को त्याग रहा है। लेकिन हमने सुना है ना कि कभी कभी जैसे वृंदावन की गोपियां वो सोच रही थी हमें प्राण त्यागना चाहिए, है ना, सोचती थी कि हम जीवित हैं इसका मतलब है कि कृष्ण के प्रति हमारे अंदर प्रेम नहीं है, कृष्ण तो वृंदावन छोड़ के चले गए और हम लोग अभी तक जीवित हैं, इसका क्या मतलब है कि हमारे अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है। तो कभी कभी ऐसे प्रेमी भक्त अपने प्राण त्यागने के विचार मन में रखते हैं, तो इसलिए स्पष्टीकरण कर रहे हैं महाप्रभु। इसके बारे में क्या कहते हैं आइए देखते हैं। प्रेमी भक्त वियोगे चाहे देह छाड़ी थे, प्रेमे कृष्ण मिले से हो ना पारे मोरी थे। कभी कभी प्रेमी भक्त जो होते हैं विरह में अपने प्राण को त्यागना चाहते हैं, उस विरह की भावना वो प्रेमी भक्तों के लिए है, सबके लिए नहीं। प्रेमे कृष्ण मिले से हो ना पारे मोरी थे, परंतु ऐसे शुद्ध कृष्ण प्रेम के विरह में कृष्ण का दर्शन हो जाता है, कृष्ण का साक्षात्कार और अनुभव हो जाता है, इसलिए वो मर नहीं पाता है। तो शुद्ध भक्त या प्रेमी भक्त जो होते हैं कभी भले विरह में प्राण त्यागना भी चाहें, परंतु उस विरह में कृष्ण का अनुभव इतना तीव्र होता है कि वो प्राण त्याग नहीं पाते हैं। इसलिए गोपियां कहती हैं हम जी भी नहीं पा रहे हैं, मर भी नहीं पा रहे हैं। ये ऐसी अवस्थाएं कृष्ण प्रेम की अवस्थाएं, इनके बारे में हम केवल सुन मात्र सकते हैं भागवत से। इसका अनुभव करना तब होगा जब हम उस स्तर तक पहुंचेंगे ब्रजवासियों की कृपा से। ऐसे लगता है मानो ये अमृत और विष का मिश्रण है। दोनों का मिश्रण कभी ग्रहण किया है आपने? अमृत का स्वाद कैसे है पता है, विष तो अमृत के समान नहीं होता। विष और अमृत को मिलाएंगे तो कैसे होगा? वैसे ही ये कृष्ण प्रेम के विरह की भावना, परंतु उस स्तर पर ये सब दिव्य आनंद ही होता है। गाढ़ अनुरागे रे वियोग ना जाए सहन, ताते अनुरागी वांछे आपन मरण। जो कृष्ण प्रेमी है, जो अत्यंत प्रेम करता है कृष्ण से, वो कभी भी कृष्ण से दूर नहीं हो सकता। कृष्ण से विरह है उसके लिए असहनीय हो जाता है, और इसलिए ऐसे विरह की भावना में कभी कभी वो इच्छा रखता है कि मेरी मृत्यु हो जाए। फिर से भागवत और अन्य श्लोकों से वो कहते हैं, प्रमाण देते हैं, जैसे रुक्मिणी देवी स्वयं कह रही हैं कि स्वयं शिवजी आदि आपके चरण धूलि को अपने शरीर में स्वीकार करते हैं, तो यदि मुझे आपके चरणों की कृपा प्राप्त नहीं होती है तो मैं ऐसे व्रत धारण करूंगी, स्वीकार करूंगी, जिससे कि मेरे जीवन की अवधि कम हो जाएगी, और इस प्रकार से मैं सैकड़ों शरीर एक एक जन्म के बाद हर एक जन्म में मैं शरीर त्यागती रहूंगी यदि ऐसे करने से आपकी कृपा प्राप्त हो। तो महाप्रभु कहना चाह रहे हैं कि तीव्र कृष्ण प्रेम में ऐसी भावना कभी कभी आती है। फिर आगे कहने लगे महाप्रभु, कुबुद्धि छाड़िया करो श्रवण कीर्तन, अचिरात पावे तबे कृष्ण रचरण। तो ऐसे कुबुद्धि को त्यागो, ऐसे खराब विचारों को त्यागो, केवल अपने आप को श्रवण कीर्तन के पथ में स्थित कराओ, क्योंकि ऐसे श्रवण कीर्तन करने से कृष्ण प्राप्त होंगे। नीच जात नाहे कृष्ण भजन अयोग्य, सतकुल विप्र नाहे भजन अयोग्य। बहुत सुंदर बात। नीच जाति नोहे कृष्ण कृष्ण भजन अयोग्य। किसी ने नीच तथा कथित नीच जाति में जन्म लिया है, इसलिए वो कृष्ण भजन करने के लिए अयोग्य नहीं है। और यदि किसी ने सत जाति में तथा कथित ऊंचे जाति में जन्म लिया है, इसलिए वो कृष्ण भजन करने के लिए योग्य नहीं बन जाता। केवल अपने जन्म के आधार पर कोई योग्य या अयोग्य नहीं बनता। जे भजे से बड़ो अभक्त ही न छाड़, कृष्ण भजने नहीं जाती कुलादि विचार। जे भजे से बड़ो, जो कृष्ण का भजन करता है वो बड़ा आदमी है, और जो अभक्त है वो तो पतित माना जाता है, निंदनीय है। कृष्ण भजन नहीं जाति कुल आदि विचार। कृष्ण भजन के पथ में जाति, परिवार, कुल, भाषा, देश, ये सब चीजों का कोई विचार नहीं है। बल्कि अन्य जगह में भी ये कहा गया है कि ये एक वैष्णव अपराध होता है, किसी एक भक्त को जाति के संबंध में देखना या वर्ण के हिसाब से देखना कि ये अमुक जाति का वैष्णव है इसलिए ये ऐसा है, ये उस वर्ण का वैष्णव है इसलिए वो वैसा है, क्योंकि वैष्णव का कोई जाति से, कुल आदि से कुछ लेना देना नहीं होता है। दीनेर अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित धनीर बड़ अभिमान। दीनेर अधिक दया करे भगवान, जो दीन होते हैं उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण अधिक दया करते हैं, और जो कुलीन होते हैं, पंडित होते हैं, धनी होते हैं, उनका बड़ा अभिमान होता है, इसलिए भगवान उनके ऊपर इतनी कृपा नहीं करते हैं। जो दीन होते हैं वो निस्सहाय भाव अपने मन में रखते हैं, इसलिए भगवान की कृपा शीघ्र ही उनको प्राप्त हो जाती है। और फिर महाप्रभु कहते हैं, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, तो कृष्ण भजन के पथ में ये नवविधा भक्ति जो है ये श्रेष्ठ है। नवविधा भक्ति कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा। तो ये नौ पद्धतियां जो है भक्ति की, भजन की, ये सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा महाप्रभु कह रहे हैं। कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, ये बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि ये कृष्ण और कृष्ण प्रेम को दिला सकती हैं। ये नौ प्रकार की भक्ति, तो इन नौ प्रकार की भक्तियों में से, नवविधा भक्ति में से कौन सा श्रेष्ठ है, अब ये आगे बताएंगे महाप्रभु। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लोयले पाये प्रेमधन। तो नवविधा भक्ति में नाम संकीर्तन ये श्रेष्ठ है, और जो बिना अपराध के नाम लेता है उसे कृष्ण प्रेम का धन शीघ्र ही प्राप्त होता है। तो कृष्ण भजन में सर्वश्रेष्ठ क्या है? नवविधा भक्ति। नवविधा भक्ति में से श्रेष्ठ कौन सा है? नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन करने से क्या होता है? कृष्ण प्रेम का महाधन बहुत देर से प्राप्त होता है। जल्दी प्राप्त होता है, ठीक, सही है, निश्चित, ये महाप्रभु कह रहे हैं, शीघ्र ही प्राप्त होता है। जो नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं शीघ्र ही उनको कृष्ण प्रेम का धन प्राप्त हो जाता है। এত শুনি সনাতনের সনাতনের হইল চমৎকার, প্রভুর না ভয় মোর মরণ বিচার। ये सब सुनकर सनातन गोस्वामी के मन में चमत्कार हुआ, आश्चर्य हुआ। प्रभु मेरे विचारों से सहमत नहीं है, ऐसे मन में विचार किया। किस विचार से सहमत नहीं है? आत्महत्या करने के विचार से प्रभु सहमत नहीं है, ये तो जान लिया उन्होंने। सर्वज्ञ महाप्रभु निषेधिला मोरे, प्रभुर चरण धोरी कोहि न तहरे। तो सनातन गोस्वामी ने निष्कर्ष निकाला कि चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान भविष्य तीनों जानते हैं, और उन्होंने मुझे आत्महत्या करने से रोक दिया है। फिर सनातन गोस्वामी महाप्रभु के चरणों में पड़े और उनके चरण कमलों का स्पर्श करते हुए महाप्रभु से प्रार्थना करने लगे। तो क्या कहा सनातन ने? सर्वज्ञ कृपालु तुमि ईश्वर स्वतंत्र, जाय छे नाचाओ ताय छे नाची जन काष्ठ जंत्र। सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से कहा कि आप सर्वज्ञ हैं, आप कृपालु हैं, और आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, और आप जैसे मुझे नचाओगे मैं नाचूंगा। जैसे एक काष्ठ की पुतली होती है, कठपुतली होती है, वैसे मैं नाचूंगा। नीच अधम पामर मुई पामर स्वभाव, मनोजी आइले तुम्हार की वह होई बेलाग। देखिए सनातन गोस्वामी की नम्रता कैसी थी। सनातन गोस्वामी कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं, ये सनातन गोस्वामी अपने हृदय से अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? अपने बारे में कह रहे हैं, नीच अधम पामर मुई पामर स्वभाव। मैं नीच हूं, मैं अधम हूं, पामर, पामर मतलब निंदित हूं मैं, और मेरा स्वभाव भी इसी प्रकार का है, मैं स्वभाव से ही पापी हूं। मोरो जियाले तुम्हार की बहबे लाभ, अरे मैं जीऊंगा भी तो आपका लाभ क्या होगा इसमें? सनातन गोस्वामी महाप्रभु से कह रहे हैं। फिर प्रभु क्या उत्तर देते हैं? प्रभु कहे तुमार देह मोर निज धन, तुमी मोरे करी आछो आत्मसमर्पण। आप समझ रहे हैं ना? महाप्रभु ने कहा तुमार देह मोर निज धन, ये तुम्हारा देह जो है सनातन, ये मेरा धन है। क्यों? तुमी मोरे करी आछो आत्मसमर्पण। तुमने जो आत्मसमर्पण किया है ना मेरे चरणों में, एक बार आत्मसमर्पण कर लिया तो तुम्हारा सब कुछ मेरा है, तो तुम्हारा देह भी ये मेरा है। पौरेर द्रव्य तुमी कहने चाह विनाशिते, धर्मा धर्म विचार केवल ना पर कोरिते। पौरेर द्रव्य तुमी कहने चाह विनाशिते, अन्य का दूसरे का जो दूसरे की संपत्ति है उसको क्यों विनष्ट करना चाहते हो? आप समझ रहे महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा शरीर तुमने मुझे सौंप दिया है तो ये मेरा धन हो गया, मेरी संपत्ति हो गई। अब दूसरों की संपत्ति को नष्ट करने वाले तुम कौन होते हो? धर्म अधर्म विचार की वह नापारी को रीते, क्या धर्म अधर्म का विचार नहीं कर पा रहे हो? क्या नहीं जान पा रहे हो कि दूसरे की संपत्ति का नाश कभी नहीं करना चाहिए? तुम्हारा शरीर मोर प्रधान साधन, यही शरीर साधिमु आमी बहु प्रयोजन। तुम्हार शरीर मोर प्रधान साधन, तुम्हारा जो शरीर है सनातन, मेरा एक प्रधान निमित्त है, एक यंत्र है, मुझे अनेक कार्य संपन्न करने हैं तुम्हारे द्वारा। यही शरीर साधिमु आमी बहु प्रयोजन, तुम्हारे द्वारा मैं अनेक कार्य संपन्न करना चाहता हूं। मेरे आंदोलन के संबंध में तुम्हें मैं बहुत महत्वपूर्ण एक निमित्त बनाना चाहता हूं। तुम्हारे इस शरीर के माध्यम से मैं मेरे कार्यों को संपन्न कराना चाहता हूं, और तुम चाह रहे हो कि शरीर को नष्ट कर दोगे। भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्पर निर्धार वैष्णवेर कृत्य आर वैष्णव आचार। तो अब महाप्रभु बता रहे हैं सनातन को कि सनातन को महाप्रभु के लिए क्या करना है या महाप्रभु सनातन गोस्वामी के द्वारा क्या करवाना चाहते हैं। भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्वेर निधार। कृष्ण क्या है, कृष्ण प्रेम क्या है, भक्ति क्या है, भक्त क्या है, इसका निर्धारण करना है। शास्त्रों के आधार पर इनके बारे में ग्रंथ लिखने हैं सनातन गोस्वामी को, महाप्रभु का आदेश है उनके लिए। वैष्णवेर कृत्य और वैष्णव आचार, वैष्णव के कार्य कैसे होते हैं, वैष्णव का आचार कैसे होता है, इसके बारे में भी निर्धारण करना है सनातन गोस्वामी को। कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन लुप्त तीर्थ उद्धार आर वैराग्य शिक्षण। और तुम्हें क्या करना होगा, कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम क्या चीज है इसका स्पष्टीकरण करना होगा, साथ साथ सेवा प्रवर्तन, तुम्हें ऐसे कृष्ण सेवा के लिए बहुत चीजों की स्थापना करनी होगी, सिद्धांतों की स्थापना करनी होगी। लुप्त तीर्थ उद्धार, जो भगवान कृष्ण की लीला स्थल भी लुप्त हो गए हैं पुनः उनको तुम्हें प्रकट कराना होगा। आर वैराग्य शिक्षण, और ये शिक्षा देनी होगी तुम्हें, उपदेश देना होगा लोगों को कि वैराग्य का जीवन कैसे बिताना चाहिए। निज प्रिय स्थान मोरा मथुरा वृंदावन तहां ऐ तो धर्म चाही कोरी ते प्रचारण। तो मथुरा वृंदावन मेरा निजी प्रिय स्थान है और वहां मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं कृष्ण भक्ति के प्रचार के बारे में। मातर आज्ञाए आमी बोशी नीला चले तहां धर्म सिखाई ते नहीं निज बोले। तो मेरी माँ के आदेश से मैं तो जगन्नाथपुरी में बैठा हूं, मैं तो मथुरा वृंदावन में जाके लोगों को सिखा नहीं सकता हूं कि कैसे धर्म के अनुसार हमें जीना चाहिए। ऐतो सब कर्म आमी जे देह करिमु ताहा छाड़ी ते चाहो तुम्हें कैमनो सहिमु। ये सारे काम तुम्हें तुम्हारे शरीर के द्वारा करवाना चाहता हूं और अब तुम कह रहे हो कि तुम इस देह को त्यागना चाहते हो, तो मैं कैसे सहन कर सकता हूं इस प्रस्ताव को। तबे सनातन कहे तुमके नमस्कारे तुम्हारा गंभीर हृदय के बुझीते पारे। फिर सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से कहा कि आपके चरणों में मैं नमस्कार करता हूं, आपके हृदय में जो गहरे विचार है उनको भला कौन समझ सकता है। काष्ठेर पुतली जानो कुह के न चाहे अपने न जाने पुतली की बा नाचे गाए। एक कठपुतली किसी के नियंत्रण में नाचता है गाता है, परंतु कठपुतली को स्वयं समझ नहीं आता कि वो कैसे गा रहा है कैसे नाच रहा है, उसको पता नहीं होता है, फिर भी वो गा रहा है नाच रहा है। तो सनातन गोस्वामी कहना चाहते हैं मैं तो ये सब कुछ नहीं जानता, आप जो करवाना चाहोगे मुझसे आप ही करवाओगे। जारे जाय छे नाचाओ से ताय छे करो नर्तने कोई छे नाचे के वो नाचाए से हो नहीं जाने। जिस प्रकार से आप किसी को नचाओगे वैसे वो व्यक्ति नाचेगा, वो व्यक्ति नहीं जानेगा कि मैं कैसे नाच रहा हूं क्या गा रहा हूं, कुछ नहीं जानेगा, जैसे आप करवाओगे वो वैसे करेगा। फिर महाप्रभु हरिदास ठाकुर की ओर देखते हैं क्योंकि हरिदास ठाकुर भी उपस्थित थे उस समय, ये वार्तालाप ये संवाद तो उन्हीं के निवास स्थान में हुआ। हरिदास से कहे प्रभु सुनो हरिदास पौरे द्रव्य इहो चाहे न कोरी ते विनाश। देखो हरिदास ये सज्जन है कौन, सनातन, ये दूसरे के संपत्ति का नाश करना चाहते हैं। देखो तुम्हारे मित्र है ना, ये दूसरे के संपत्ति का विनाश करना चाहते हैं, अच्छा प्रस्ताव है क्या, ऐसा महाप्रभु कहने जा रहे हैं हरिदास ठाकुर से। परेर स्थाप्य द्रव्य केहु न खाए बिलाए, निषेधीय इहारे जेनु न करे अन्याय। जब विश्वास में कोई संपत्ति किसी के हवाले की जाती है तो उस दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है कि उस संपत्ति को वो न तो इधर उधर बांट लें, न ही वो अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करें। इसलिए हरिदास आपके मित्र को ये बातें बताना और कहना कि ऐसे अयोग्य और गैर कानूनी चीज वो न करे। हरिदास कहे मिथ्या अभिमान कोरी, तुम्हारा गंभीर हृदय बुझते न पारी। हरिदास ठाकुर कहने लगे हम लोग तो सब अभिमानी हैं, घमंडी हैं, आपके गहरे विचारों को कौन भला समझ सकता है। कौन कौन कार्य तुम्ही करो कौन द्वारे, तुम्ही ना जानाइले केहो जानते न पारे। आप किन किन के द्वारा कौन से कार्य करवाना चाहते हैं हम कैसे जान सकते हैं जब तक आप हमें नहीं बताएंगे। एतादृश तुम्ही इहार कोरिया चंगीकार, एतो सौभाग्य इहा न होय कहार। आपने तो स्वयं सनातन गोस्वामी को स्वीकार किया है, आपने उनके देह को अपना अपनी संपत्ति मान ली है, तो सनातन गोस्वामी से ज्यादा भाग्यवान कौन हो सकता है। फिर चैतन्य महाप्रभु ने दोनों हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी को आलिंगन किया। फिर हरिदास ठाकुर ने क्या कहा सनातन से, सनातन कहे हरिदास कोरी आलिंगन, तुम्हारा भाग्य रसी में ना जाए कथन। जब महाप्रभु चले गए तो हरिदास ठाकुर ने आलिंगन किया सनातन गोस्वामी को और कहने लगे सनातन तुम्हारे भाग्य की कोई सीमा नहीं है। तुम्हारा देह कहिन प्रभु मोर निज धन, तुम्हारा सम भाग्यवान नहीं कोन जन। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं तुम्हारे शरीर को अपना निज धन मान लिया है, तो तुमसे ज्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है सारी दुनिया में। निज देह जे कार्य ना पारे न करीते, से कार्य कराइबे तुम्हार सेह मथुराते। जो कार्य स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं कर पा रहे हैं वो तुम्हारा तुम्हारे द्वारा करवाना चाहते हैं और वो भी मथुरा में। जे कराइते चाहे ईश्वर से सिद्ध है, तुम्हारा सौभाग्य ऐ कहुलु निश्चय। जो भी भगवान चाहते हैं और हमारे द्वारा करवाना चाहते हैं वो तो होना ही होना है, निश्चित ही वो होगा। इसलिए ये आपका बड़ा सौभाग्य है, ये मेरा निश्चय है, ये मेरा मत है। भक्ति सिद्धांत शास्त्र आचार निर्णय, तुम द्वारे कोराई बेना बुझी लूनाशय। अब चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि तुम भक्ति के सिद्धांत के ऊपर और शास्त्र में जो भक्ति भक्त को आचरण कैसे करना चाहिए, आचार विचार आदि के बारे में ग्रंथ लिखना, ये महाप्रभु चाहते हैं तुम्हारे लिए। तुम्हारा द्वारा कोरी बेन बुझी लू नाशा, ये तो मैं इस संवाद से समझ चुका हूं कि महाप्रभु तुम्हारे द्वारा ये सब करवाना चाहते हैं। आमार ए देह प्रभुर कार्य न लगिल, भारत भूमि ते जन्मी ए देह व्यर्थ होइल। मेरा शरीर है सनातन ऐसे किसी काम का नहीं आ पाया महाप्रभु के लिए, हालांकि मेरा जन्म भारत भूमि में हुआ फिर भी ये व्यर्थ रहा। फिर सनातन गोस्वामी थोड़े चुप बैठने वाले थे ये सुन के, सनातन गोस्वामी को भी उत्तर देना था ना कुछ, तो सनातन गोस्वामी ने क्या कहा। सनातन कहे तुम क्षमा के बो आचियान, महाप्रभु गौणे तुम्हें महाभाग्यवान। हे हरिदास ठाकुर, तो आपके समान और कौन हो सकता है, आप तो महाप्रभु के एक निकट के पार्षद हैं, इसलिए आप भी महाभाग्यवान हैं। अवतार कार्य प्रभु नाम प्रचारे से निज कार्य प्रभु करेन तुमार द्वारे। महाप्रभु का अवतार यहाँ हुआ है हरि नाम का प्रचार करने के लिए, और स्वयं हरि नाम का प्रचार करने के बजाय वो आपके माध्यम से ये युग धर्म का प्रचार करवा रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर से ये कहना चाहते हैं कि मेरे से ज्यादा भाग्यशाली आप हैं, क्योंकि सारे युग धर्म की स्थापना और प्रचार महाप्रभु आपके द्वारा करवा रहे हैं। प्रत्यह करो तीन लख नाम संकीर्तन, सवार आगे करो नामेर महिमा कथन। हे प्रभु, आप रोज 3 लाख नामों का जप करते हैं। 3 लाख नामों का जप अर्थात कितने माला? 192 माला। और हम कितने करते हैं एक दिन में? 16। और हरिदास ठाकुर करते थे 192 कम से कम। और अभी देखिए सनातन गोस्वामी स्तुति कर रहे हैं हरिदास ठाकुर की। स्तुति करनी है तो ऐसे करनी चाहिए भक्तों की, जैसे सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर की कह रहे हैं। अपने आचार्य के हो ना करे प्रचार, प्रचार करे न के हो ना करे न आचार। ऐसे कोई लोग होते हैं अपने आचार्य के हो, उनका आचरण बहुत अच्छा होता है परंतु वो प्रचार नहीं करते। और थोड़े ऐसे होते हैं तो प्रचार करते हैं लेकिन आचरण ठीक नहीं होता है। ऐसे होता है ना कभी कभी, किसी का आचरण बहुत अच्छा होता है परंतु प्रचार नहीं करते हैं। कोई प्रचार तो खूब करते हैं लेकिन आचरण में गड़बड़ होता है। तो सनातन गोस्वामी आगे कहते हैं, आचार प्रचार नामे करह दुही कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेर आर्य। परंतु आप आचार और प्रचार दोनों ही बहुत अच्छी तरह से करते हैं और इसलिए आप सारे विश्व के जगत गुरु हैं और आप सारे विश्व के सबसे आगे बढ़े हुए प्रेमी भक्त हैं। इस प्रकार दोनों सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर परस्पर कृष्ण कथा करते रहे। तो इस कथा से हम क्या सीख सकते हैं बताइए, अभी उपदेश क्या ग्रहण करना है हमें इस लीला से? हाँ, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम में से कोई आत्महत्या करने जा रहे हैं इसलिए हम रोक रहे हैं, नहीं। लेकिन सीखने योग्य क्या क्या है उपदेश इस लीला के माध्यम से, अब बताइए, हाथ ऊपर करके बताइए। हाँ, एक पॉइंट कोई। ठीक है, एक बात हम इसे सीख सकते हैं कि जब हमने प्रभुपाद जी के आंदोलन में हम समर्पित हो गए हैं तो भी हमारा देह हमारा सब कुछ हमारा हो गया है, नहीं नहीं प्रभुपाद का हो गया है। तो प्रभुपाद के हवाले कर दिया, अब हमने समर्पित कर दिया, अब हमारी स्वतंत्रता खत्म। ये अपना देह नहीं है, ये अपना घर नहीं, अपना परिवार नहीं, अपना धन नहीं। अच्छी बात, और क्या? हाँ 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 तो क्योंकि ये देह भगवान की संपत्ति है तो इसका भी देखरेख करना चाहिए, ये समझ के कि ये भगवान की संपत्ति है, भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करना है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए। और कोई बात? हाँ हाँ, भगवान कृष्ण केवल भक्ति के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। कृष्ण प्राप्ति कृष्ण भक्ति से होता है, कृष्ण भक्ति से कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम से कृष्ण प्राप्त होते हैं। अन्य किसी भी पथ से कृष्ण नहीं पाए जा सकते। और क्या सीख सकते हैं? हाँ भक्तों की प्रशंसा करनी चाहिए। हाँ भक्तों के अच्छे गुणों को हमें देखना चाहिए। ठीक है, और क्या? हाँ हाँ भक्तों के दास बन के सेवा करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन विशेष करके इस लीला से और क्या सीख सकते हैं? हाँ एक मिनट। गुरु के प्रति शरणागति, शरणागत होना चाहिए। अब हम समर्पित हो चुके, वही पॉइंट जो पहली बात थी। हमारा शरीर भी अपनी संपत्ति नहीं है, वो भी हमने हवाले कर दिया है। हाँ हनुमान महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण भजन में नवविधा भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, नवविधा भक्ति में नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। और वो नाम संकीर्तन कैसे किया जाना चाहिए? निरपराध भाव से, बिना अपराध किए हुए। ठीक है, और क्या बातें हैं कोई? हाँ बहुत अच्छा। हरिदास ठाकुर के उदाहरण से हम सीख सकते हैं कि जब हरिदास ठाकुर ने देखा कि सनातन गोस्वामी को इतनी कृपा मिली है महाप्रभु की, तो उनके हृदय में ईर्ष्या नहीं हुई कि सनातन गोस्वामी को इतनी कृपा मिली मुझे नहीं मिली, ऐसे नहीं। उनको खुशी हुई, बड़े आनंदित होकर वो कहने लगे कि सनातन तुम कितने भाग्यशाली हो। तो जब भक्तों को कृपा मिलती है तो हमें भी आनंदित होना चाहिए। हाँ माता जी बोलिए। हरिदास ठाकुर रोज 192 माला कम से कम जप करते थे और हम लोग 16 माला कोशिश करके कर लेते हैं। हाँ वैष्णवों को के बीच में वर्ण भेद, जाति भेद आदि नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कोई बात? हाँ मतलब प्रचार करके भगवान की भक्ति आदि के बारे में अन्यों को बताना चाहिए। ठीक है, और कोई? हाँ प्रचार के साथ साथ हमारा आचरण भी ठीक नहीं हो तो भी चलता है, नहीं? क्या कहा हमने? गलत सुना ना? क्या कहा? प्रचार के साथ साथ आचरण भी ठीक होना चाहिए, बल्कि आचरण ही सबसे महत्वपूर्ण प्रचार है। एक बार एक क्लास में हम कह रहे थे मंदिर में, आपको याद होगा, किसी को याद है वो वाक्य? याद है किसी को? हाँ वो तो है। विशेष एक बात हम बोले थे प्रचार के बारे में और बोलने के बारे में, और आचरण प्रचार और बोलने के बारे में। एक संत ने कहा है कि हमें दिन भर प्रचार करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर कुछ बोलना चाहिए। बहुत गहरा वाक्य है ये, आप समझ रहे हैं? इसको दोहराइए। दिन भर प्रचार करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर थोड़ा कुछ बोलना चाहिए। इसका क्या मतलब, इसका तात्पर्य कौन समझाएंगे? हाँ बहुत है, अच्छा है कि हमारे आचरण से प्रचार होता है, बल्कि हमारा आचरण ही सबसे महत्वपूर्ण प्रचार है। यदि आचरण और प्रचार में भेद हुआ तो लोग क्या देखेंगे, आचरण को देखेंगे या हमारे शब्दों को देखेंगे? आचरण को देखेंगे। इसलिए हमारा आचरण ही श्रेष्ठ प्रचार है, और ऐसे सही आचरण करते करते आवश्यकता पड़ने पर कुछ बोल देना चाहिए, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, कृष्ण भगवान है, जो उचित है वो बोलना चाहिए। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है हमारा आचरण। और बताइए इस लीला से और क्या सीख सकते हैं? हाँ माता जी, हाँ, वैष्णवों की चरण धूलि को स्वीकार करने का मतलब है उनके आदेशों को स्वीकार करना, न कि केवल धूल लेते रहें लेकिन आदेशों का पालन नहीं करें। और इस लीला से क्या सीख सकते हैं? हाँ भक्ति के लिए कम से कम सत्व गुण में स्थित होना चाहिए। क्यों ऐसा कह रहे हो, क्या इसमें संबंध है इस लीला से? क्योंकि आत्महत्या आदि ये तामसिक कार्य हैं, और महाप्रभु कह रहे हैं तामसिक कार्यों से भगवान कृष्ण प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए हमें सात्विक जीवन जीना चाहिए। हाँ हमारे आंदोलन में नाम संकीर्तन का ज्यादा महत्व है। और कोई बात जो इस लीला से हम सीख सकते हैं? सेवा भाव, हाँ, लेकिन विशेष करके जो हमने अभी पढ़ा या सुना इस लीला से, हाँ जो भी हम भक्ति में करते हैं प्रचार आदि, हम भगवान के निमित्त हैं, भगवान हमसे करवाते हैं। जो अच्छे काम होते हैं भगवान करवाते हैं, जो हम कार्य को अच्छे नहीं करते तो ये नहीं कह सकते भगवान ने करवाया हमसे, उसके लिए दोष हमें अपने आप लेना चाहिए। हाँ माता जी, हमें भगवान के चरण जाना चाहिए और कठपुतली की तरह हमें रहना चाहिए, समझना चाहिए कि हम कठपुतली हैं, भगवान के हाथ में हैं, तो पूरी तरह से ऐसे शरण में भगवान के जाना चाहिए। और क्या, भगवान सबके हृदय को जानते हैं, सबके विचार क्या है वो जानते हैं, ठीक है। और हाँ हाँ भगवान ने हमें इतने सारे भक्ति के रास्ते बताए हैं, यदि हम उनका लाभ नहीं उठाते हैं तो हम जीवित शव हैं। बहुत अच्छा। और ईर्ष्या भाव को भूलना चाहिए, ठीक है। और हाँ भगवान के निर्माल्य को स्वीकार करना चाहिए। बहुत अच्छा। सनातन गोस्वामी इतने ऊंचे भक्त होने के बाद भी अपने आप को बहुत नीच समझते थे, बल्कि ऐसे कहना चाहिए कि सनातन गोस्वामी इतने ऊंचे भक्त होने के बाद भी नहीं, सनातन गोस्वामी इतने ऊंचे भक्त होने के कारण वो सोच रहे थे कि वो इतने नीचे हैं, नहीं तो और कौन सोचेगा अपने बारे में ऐसे। केवल ऊंचे भक्त ही सोच सकते हैं ऐसे अपने आप के बारे में कि मैं कितना नीच हूं, अधम हूं, पामर हूं। ऐसे विचार किसी साधारण व्यक्ति के मन में नहीं आते हैं। हाँ, सनातन गोस्वामी रोगी, वो रोगी थे, बल्कि महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया। आलिंगन करके उनके सारे जो शरीर के फोड़े थे वो सब गायब हो गए और उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। बल्कि ये दूसरे लीला में आता है, इससे संबंधित है। जब महाप्रभु ने ऐसे किया तो सनातन गोस्वामी को बहुत बुरा लगा कि आपने क्या कर दिया, मेरे शरीर पे इतना सब गंदी चीजें आपने इनका स्पर्श किया। तो महाप्रभु कहने लगे कि जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को साफ करती है और बच्चे को साफ करते समय उसे ये नहीं लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, बच्चे माँ के मन में बच्चे के प्रति प्रेम ही रहता है, ठीक उसी प्रकार से मुझे कोई गंदगी नहीं लग रही है सनातन, जब मैं तुम्हें आलिंगन कर रहा हूँ, ऐसे महाप्रभु कहते हैं। तो एक पॉइंट हम बताना चाह रहे हैं कि इससे हम क्या सीख सकते हैं। जैसे महाप्रभु सनातन गोस्वामी को निमित्त बनाना चाहते हैं उनके यंत्र, उनके आंदोलन के लिए, केवल सनातन गोस्वामी को बनाना चाहते हैं कि और किसी को भी बनाना चाहते हैं? हम सबको बनाना चाहते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे महाप्रभु ने कहा है वैसे हमें सोचने का प्रयास करना चाहिए कि महाप्रभु चाहते हैं कि हम सबके द्वारा उनके आंदोलन के लिए कोई कार्य हम करें, कोई जिम्मेदारी हम करें। उन्होंने हम सबके लिए कुछ सोचा हुआ है कि ये भक्त से मैं ये करवाना चाहता हूं, भले हमें वो पता हो या ना हो। महाप्रभु हम में से हर एक से कुछ ना कुछ सेवा लेना चाहते हैं और हमसे उनके आंदोलन को बढ़ाने के लिए कुछ करवाना चाहते हैं हमारे माध्यम से। तैयार हैं? तैयार हैं? हाँ। बहुत अच्छा। तो जो उपदेश सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने दिया वो केवल सनातन गोस्वामी के लिए नहीं था, वो हम सब के लिए है। और इसलिए हमें भी जान लेना चाहिए कि महाप्रभु हमसे क्या अपेक्षा करते हैं। क्या अपेक्षा करते हैं महाप्रभु हमसे, बताइए? कौन हाथ ऊपर करके बताइए कोई? ये कथा सुनने के बाद कोई भक्त जिन्होंने अभी तक उत्तर नहीं दिया है वो हाथ ऊपर करें। अभी हमने सूत्र मात्र बता दिया। महाप्रभु हमसे क्या चाहते हैं? हाँ, नहीं वो ठीक है, नाम संकीर्तन है, प्रचार, और विशेष करके इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए हमसे कुछ सेवा लेना चाहते हैं। जैसे सनातन गोस्वामी के उन्होंने अमुक सेवाएं दिए कि आपको ग्रंथ लिखने हैं, जो कृष्ण लीला के स्थल हैं उनको प्रकाशित करना है। वैसे हम सब के लिए महाप्रभु के मन में कोई ना कोई सेवा है हमारे लिए, वो हमारे द्वारा कुछ सेवा करवाना चाहते हैं। क्या हम सब तैयार हैं? तैयार नहीं है इसका मतलब आधा। तो हमें सनातन गोस्वामी के पद चिन्हों में चलना चाहिए, जैसे वो अपने आप को महाप्रभु के शरण में कठपुतली के समान बना दिए वैसे हमें भी बनना चाहिए। अपनी स्वतंत्रता, अपने अहंकार, अपने स्वार्थ आदि को त्याग करके भगवान के शरण में जाके हमें भी निमित्त मात्र बनना है महाप्रभु के लिए। सनातन गोस्वामी जैसे तो बड़ा कार्य हम नहीं कर सकते, परंतु जो भी छोटी चीज है, भले छोटी चीज कोई भी छोटी चीज क्यों ना हो, उसे हम कर सकते हैं। हम कितने भी छोटे बड़े क्यों ना हो, उसको तो हम जरूर कर सकते हैं। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम तो सनातन गोस्वामी नहीं हैं, हम कैसे करेंगे। नहीं, छोटा सा काम भी महाप्रभु कर सकते हैं हमारे लिए, लेकिन वो इतना छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा है। एक भक्त को भी हम लाएं यदि कृष्ण भक्ति के पथ में, बहुत बड़ा कार्य है ये। और इसलिए सनातन गोस्वामी ने जो कहा, आचार और प्रचार दोनों चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ये दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। अपने आप को महाप्रभु का प्रतिनिधि समझकर, उनके दासों के दास समझकर हमें इस आंदोलन को बढ़ाना है। ठीक है, तो अपना जीवन अपना नहीं है, ये हमने सौंप दिया है गुरु परंपरा को और भगवान को। ये भाव लेकर अभी हम यहां से निकलेंगे, ठीक है। और घर पहुंचने तक भूल जाना नहीं है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है हर प्रवचन में श्रवण व कीर्तन में जोर देते हैं, भक्ति तो नव विधा है, तो अन्य सात विधि न करने से भी चलता है? वैसे चलता है।